Olha, اللہ نے ہم انسانوں کو بڑی نعمتیں دی ہیں, جو تو اللہ نے ہر مخلوق کو نعمت دیا ہے لیکن انسانوں کو خصوصی نعمتوں سے نوازا اور تمام مخلوق پر برتری دی اللہ نے انسان کو. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے سب انسان کے لیے پیدا کی ہیں. قرآن میں جگہ جگہ ہے خلقنا لکم سخرنا لکم, تمہارے لیے پیدا کیا چاند کو سورج کو, ان سب چیزوں کو تمہارے قبضے میں بھی دے دیا سخرنا لکم. اور جب انسان کی باری آتی ہے تو کہتا ہے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے. وحملناہم فی البر والبحر, خشکی اور تری میں اس کو ہم نے جو ہے وہ سفر کرایا. ورزقناہم من الطیبات, اس کے لیے پاک و پاکیزہ رزق فراہم کیا. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, اور تمام مخلوقات پر اسے فضیلت اور برتری دی. اگرچہ لفظ جو ہے وہ کثیر کا لفظ آیا ہے مگر مفسرین نے عربی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے مراد جمیع لیا ہے, سب پر. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انسان سے برتر ہو, سب سے برتر انسان ہے. البتہ یہ فضیلت اجباری نہیں ہے, سونے کو لوہے پر برتری ہے یہ اجباری فضیلت ہے. سونا ہمیشہ لوہے سے برتر رہے گا, لوہا ہمیشہ سونے سے کمتر رہے گا, اور سونے کے سونا بننے میں اس کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے. انسان کی فضیلت ایسی نہیں ہے, انسان کی فضیلت اجباری نہیں ہے, اختیاری ہے. اللہ نے صلاحیت دی ہے انسان کو برتر بننے کی, بنا نہیں دیا ہے, برتر بننے کی صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت جانور کے پاس نہیں ہے, وہ صلاحیت درخت کے پاس نہیں ہے, وہ صلاحیت جمادات کے پاس نہیں ہے. جو انسان کے پاس صلاحیت ہے برتر بننے کی صلاحیت ہے. اب یہ انسان کو اختیار ہے, چاہے تو برتر بنے چاہے تو بدتر بن جائے. کیونکہ قرآن کی نگاہ میں انسان تین طرح کے ہیں, سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں, تین طرح کے انسان ہیں. انسان چاہے تو صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر کے فرشتوں سے بہتر بن جائے, اور اگر ان صلاحیتوں کو پروان نہیں چڑھاتا, وہ طریقہ وہ راستہ جو اللہ نے صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے مقرر کیا ہے انہیں نہیں اپنانا چاہتا, تو وہ جانور جیسا بلکہ جانور سے بھی بدتر بن جائے گا. تو تین انسان ہو گئے نا, فرشتوں سے بہتر, جانور جیسے اور جانور سے بدتر. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس, ہم نے جہنم کے لیے کچھ بہت سارے جناتوں سے ہمیں مطلب نہیں, ہمیں تو اپنی قوم سے واسطہ ہے نا, ہم نے بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے گویا خلق کیا ہے. لقد خلقنا, جہنم کے لیے خلق کیا ہے, یعنی نہیں کہ ان کو جہنم کے لیے اللہ بالاجبار لے جائے گا, نہیں, اپنے اختیار سے وہ گویا جہنم ہی کی طرف جائیں گے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ قرآن اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہے. وہ کون سے انسان ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, لہم اعین لا یبصرون بہا, لہم آذان لا یسمعون بہا. وہ ایسے ہیں کہ ہم نے انہیں قوت ادراک دی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, سوچتے سمجھتے نہیں. وہ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں, انہیں کان دیا ہے سنتے نہیں ہیں. ایسا انسان دیکھا ہے آپ نے کہیں؟ آنکھ ہے اور دیکھتا نہیں, कौन ऐसा इंसान? कान है और सुनता नहीं, अकल है और सोचता नहीं, कौन ऐसा इंसान है? कोई नहीं है, न मोमिन न काफिर। काफिर के आपने कान बंद किए रहते, उनके कान तो हमसे ज्यादा तेज हैं, उनकी आंखें हमसे ज्यादा तेज हैं, उनका जहन हमसे ज्यादा शार्प है। वो कौन है कि लहुम कुलूब ला यफ़क़हूना बिहा, लहुम आयुन ला युबसिरूना बिहा, लहुम आज़ान ला यस्मऊना बिहा, उलाएका कल अनआम। इसी के बोलन बाद है, ये जिनके सोचने समझने की सलाहियत है मगर सोचते समझते नहीं है, देखने की सलाहियत है मगर देखते नहीं है, सुनने की सलाहियत है मगर सुनते नहीं है, ये जानवर जैसे हैं। बल होम अवल, बल्कि ये जानवर से बदतर हैं। आंख है देखते नहीं, क्या जानवर देखता नहीं है? जो कह दिया गया कि जानवर जैसे हैं, क्या जानवर सुनता नहीं है? जानवर देखता भी है, जानवर सुनता भी है, जानवर समझता भी है। जानवर नहीं समझता? आप किसी जानवर पे हमला करें भागेगा या ठहरा रहेगा? आप शेर के आगे घास रख दें खाएगा? गोश्त रखें खा लेगा, घास रखें छोड़ देगा? क्यों भाई, अगर समझ नहीं है तो कुछ भी खा लेता, कुछ भी खा लेता। तो जानवर समझता भी है, जानवर देखता भी है, जानवर सुनता भी है। कुछ इंसान हैं जो समझते नहीं हैं, दर्क नहीं करते। कुछ इंसान हैं जो देखते नहीं, आंख होते अंधों की बात नहीं हो रही है, आंख है मगर नहीं देखते, कान है मगर नहीं सुनते, ये जानवर जैसे हैं। यानी क्या मतलब, जानवर नहीं सुनता जो आप कह रहे हैं कि ये जानवर जैसे हैं? क्या जानवर नहीं देखता जो कह रहे हैं कि जानवर? क्या जानवर नहीं समझता? जानवर भी समझता है कि हमारे लिए खतरा कहां है, जहां खतरा है वहां नहीं जाता। आपके सिखाए पढ़ाए बगैर वो जान जाता है, अंदरूनी तौर पर अल्लाह ने उसको जो सलाहियत दी है। दो अंडे लिए गए, एक ये जो है मुर्गी के और एक ये जो है मुर्गाबी के। मुर्गाबी का लफ्ज ये जो है मुश्किल तो नहीं हो गया? हाँ, वो कह देते हैं बार दफा आप उर्दू के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं, नहीं समझते। मुर्गाबी, एक मुर्गी का अंडा, एक ये जो है मुर्गाबी का अंडा, और दोनों को जो है मशीन में रख करके बच्चा निकाला गया ताकि इनके ऊपर किसी किस्म की तालीम का असर ना हो। क्योंकि अगर मुर्गी का अंडा ये जो है मुर्गी बैठ करके उसे निकालती तो हो सकता था कि मुर्गी ने चुपके चुपके सिखा दिया या मुर्गाबी ने चुपके चुपके सिखा दिया। मशीन में एक एक जगह पे दोनों की परवरिश हुई, जब किसी काबिल हो गए तो उनको हौस के पास ले गए। हौस का पानी देखते ही मुर्गी का बच्चा दूसरी तरफ भागा और जो है मुर्गाबी का बच्चा पानी की तरफ भागा। इन्हें क्यों? मुर्गी का बच्चा समझ रहा है पानी उसकी हलाकत का सबब है, मुर्गाबी का बच्चा समझ रहा है कि पानी उसकी हयात का जरिया है। तो समझ है, जब ही तो वो इधर भागा वो उधर भागा। पले तो दोनों एक ही जगह पर थे, परवरिश दोनों की एक ही जगह पर हुई थी, मां बाप दोनों के गायब थे, मुअल्लिम मुरब्बी एक। तो समझ है जब ही ना भी, चक्कर क्या है? कुरान की आयत है भाई, किसी आलिम का जुमला होता तो कहते थे होगा ऐसे ही, कुरान की आयत है, इसमें तो कुछ चारा नहीं है, एक फिर क्या? तो अजीजो, जहन है मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान है मगर सुनते नहीं। तो हमें सुनना है दो तरह का, देखना है दो तरह का, समझना है दो तरह का। एक देखना है फकत मादियात का देखना, एक सुनना है फकत मादियात का सुनना। आवाज को सुन लिया हमने, आवाज सुनने के बाद तशखीस देना ये हक आवाज है या बातिल आवाज है। जिस चीज को देख रहे हैं देखने के बाद ये तशखीस दें ये हराम है या हलाल है, हर चीज का देखना तो जायज नहीं ना है। जो कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अक्ल से जिस बात का इदराक कर रहे हैं, इदराक करने के बाद हक और बातिल में तमीज दें। कुरान कहता है कुछ वो हैं जिनके पास अक्ल तो है मगर हक और बातिल में तमीज नहीं देना चाहते कि हम कहां अपना वक्त बर्बाद करें इन चीजों में समझने में। जो देखते हैं बस देखते वक्त हराम और हलाल में तशखीस नहीं देते हैं, जो सुनते तो हैं मगर सुनते वक्त हलाल और हराम में तमीज नहीं देते हैं, ये है उलाय का कलनाम। ये जानवर जैसे हैं, जानवर भी क्या देखने में तमीज देता है, क्या हराम है क्या हलाल है, सुनने में जो आवाज आ गई, आने वाली आवाज हक की आवाज है या बातिल की आवाज है, जो ये तमीज न दे सके वो जानवर जैसा है। और यही वो है जिन्हें अल्लाह ने जहन्नम के लिए बनाया है, जहन्नम के कुंदे यही हैं। बल हुम अज़ल, बल्कि ये जानवर से भी बदतर है। क्यों बदतर हैं? जानवर के पास तो सलाहियत ही नहीं थी तशखीस देने की, उसने अगर तशखीस न दिया खेत में निकल गया, उसे ये नहीं पता कि हमारे मालिक का खेत है या दूसरे का खेत है, चरने लगा, उसके पास सलाहियत नहीं है। मगर आपको तो अल्लाह ने सलाहियत दी थी कि खाने से पहले देखो कि हराम है कि हलाल, उसके पास तो सलाहियत नहीं थी, इसलिए बल हुम अज़ल, वो जानवर से भी बदतर हैं। तो हमारी फजीलत सिर्फ सलाहियतों की हद तक है, वाकयन हम अशरफुल मखलूकात हैं नहीं, वो बनाना है हमें, बनाना चाहें तो बना ले अपने को अशरफुल मखलूकात। कैसे बनेंगे अशरफुल मखलूकात? ये सलाहियतें परवान चढ़ना है ना, सलाहियतों को जब तक परवान ना चढ़ाएं चढ़ेगी नहीं भाई। एक हमारे यहां, चूंकि हमारे अंदर दो पहलू है, जिस्म का पहलू है रूह का पहलू है, जिस्मानी सलाहियतें भी हैं रूहानी सलाहियतें पहली। बच्चा पैदा होता है, दो तीन चार किलो का बच्चा पैदा हुआ, अब इसको परवरिश चढ़ना, छोटा सा बच्चा है, छोटे से को जवान बनना है, तो जिस्म में परवान चढ़ने की सलाहियत है, बढ़ने की सलाहियत है। ये जो अभी चंद इंच का बच्चा है, ये चंद जो है फिट का बच्चा बन सकता है, बना नहीं है अभी, तो उसको परवान चढ़ाने का तरीका होता है ना। अगर गजा उसको आप ना दें, उसे आप खाना ना दें, सही माहौल ना दें, चंद दिन के बाद ये मर जाएगा। बगैर गजा के, बगैर परवरिश के ये बच्चा जिंदा रह जाएगा? नहीं जिंदा रहेगा। तो जिस तरह से जिस्मानी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बगैर किए ये जिस्मानी सलाहियतें परवान नहीं चढ़ेंगी, उसी तरह से रूहानी सलाहियतों को भी परवान चढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना है? अल्लाह ने जिस्मानी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का भी इंतजाम किया, वहां तक जहां तक उसके अख्तियार में नहीं थे, जब बाद में अख्तियार आ जाता है तो छोड़ देता है उसके अख्तियार पर। बच्चा पैदा हुआ उसके अपने अख्तियार में तो नहीं ना है कि अपने जिस्मानी सलाहियतों को परवान चढ़ाए। अल्लाह ने इंतजाम किया, बच्चा पैदा होते ही मां के सीने में दूध पैदा किया और दिल में मोहब्बत। अगर सिर्फ सीने में दूध होता और दिल में मोहब्बत ना होती, कोई औरत दूध ना पिलाती। दिल में मोहब्बत और सीने में दूध पैदा किया कि इसके जरिए से इसकी परवरिश हो सकती है। और यह जुमला कहता जाऊं कि अल्लाह ने इस दूध में भी जरूरत का लिहाज रखा, इस दूध में भी जरूरत का लिहाज रखा। लड़के के लिए दूध की जरूरत और है, लड़की के दूध की जरूरत और है। यह नुक्ता न समझते अगर मौला ना समझाते। अगर मौलाना समझाते तो पता ना चलता कि दोनों का दूध अलग अलग होता है। जब लड़का पैदा होता है तो मां के सीने में उतरने वाला दूध और होता है, लड़की पैदा होती है तो मां के सीने में उतरने वाला दूध और होता है। दो औरतें आती हैं लड़ती हुई खलीफा के पास, वो कहती है कि लड़का मेरा है लड़की इनकी है। उसका भी यही कहना है, लड़के की चाहत हर जमाने में थी ना, आज की बात नहीं है कि लड़की पैदा हुई तो मुंह उतर गया। खासतौर से हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के कल्चर में आज भी हमारे दूसरे कौमें जो हैं वो तो बाकायदा ये जो है सोनोग्राफी के जरिए से अपना फैसला कर लेती हैं और छुटकारा। नतीजा आज ये हिंदुस्तान में लड़कियों की तादाद घट गई है, खुसूसन ये जो है गैर मुस्लिमों में। गैर मुस्लिमों में चुनांचे सोनोग्राफी पर हमारे यहाँ पाबंदी लग गई है। जब आप मुआयजा नहीं कर सकते कि लड़का है कि लड़की, वहां पर भी हर एक को ख्वाहिश है कि लड़का हमारा लड़की इनकी। दो औरतें लड़ रही हैं, दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। खलीफा के पास तशरीफ ले गई कि जी फैसला कीजिए। खलीफा बेचारे परेशान, वो क्या करें, वो कहां से करेंगे, डीएनए वगैरह उस जमाने में था नहीं कि उससे कर लेते। अब उसके बाद फिर एक ही दरवाजा था, एक ही दरवाजा था कि बनाने वाले का नुमाइंदा, कंपनी के नुमाइंदे को ढूंढो ना, कंपनी का नुमाइंदा बताएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, इसमें कहां परेशानी है, कौन पुरसा कहां लगेगा। आए कंपनी के नुमाइंदे के बाद मौला के दरवाजे पर आए कि भाई बड़ी बड़ी मुश्किल आ गई है, बड़ा पेचीदा मसला आ गया है। मौला ने एक मुट्ठी खाक उठाई, उठा के जमीन पे गिरा दिया, कहा जितना आसान मेरे लिए मुट्ठी से खाक का गिरा देना है उससे ज्यादा आसान इस मसले को हल करना। उससे ज्यादा मेरे लिए इसका हल करना है। क्या हल है? जो औरत दावा कर रही थी, दोनों औरतें, एक से पहले कहा, एक बर्तन लाया गया, अपना दूध इसमें निकालो, निकाल दिया गया, इसको तोलो, तोल दिया गया। अब जितना ग्राम जो भी था बहरहाल नोट कर लो। दूसरा बर्तन बुलाया गया, इनसे कहा गया कि आप, इन्होंने कहा इसको तोलो, तोल गया। मौला ने कहा जिसका वजन ज्यादा है लड़के की माँ वो है, जिसका वजन कम है लड़की की माँ वो है। लड़की के मिजाज में ये जो है लताफत पाई जाती है, लड़के के जो है मिजाज में खुशूनत पाई जाती है। अल्लाह ने दोनों का रिस्क उनकी तबीयतों के लिहाज से किया है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, उनके मिजाज और उनकी तबीयत और उनकी जरूरतों को मद्देनजर रख करके जिस अल्लाह ने जिस्मानी परवरिश का इतना इंतजाम किया, जिस्मानी सलाहियतें परवान चढ़ें, जबकि असल हमारे यहां क्या है, रूह है, असल रूहानी पहलू है। जिस्म तो एक वसीला है, एक जरिया है, जिस्म अलबत्ता फिर मैं कहूंगा कि जरिया का मतलब है कि जरिए से आप लापरवाही बरतें, क्योंकि जरिए के बगैर तो कुछ हासिल नहीं ना होता। असल रूह है, लेकिन रूह अपने कमालात को जाहिर करने के लिए जिस्म के मोहताज है, जिस्म के मोहताज है। जिस्म की अहमियत अगर हो गई तो जिस्म रूह का मोहताज है, क्योंकि अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो बदबू आने लगती है, सड़ जाएगा जिस्म। रूह अपने कमालात के इजहार के लिए जिस्म की मोहताज, जिस्म अपने को सड़ने से महफूज रखने के लिए रूह का मोहताज। अजीजों, बाज दफा एक अहमकाना बहस शुरू होती है कि मोहब्बत अहले बैत अफजल है या अमल, नमाज मसलन, एक अहमकाना, जबकि कोई तकाबुल नहीं है। ये अपनी इनकी अहमियत, उनकी अपनी अहमियत। अमल भी अहम, मोहब्बत अहले बैत भी अहम, एक रूह है एक पैकर है। अगर मोहब्बत अहले बैत को साबित करना है जरिया, उसका अमल है। अमल बताएगा कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत है या नहीं, और अगर अमल को सड़ने से बचाना है तो मोहब्बत अहले बैत जरूरी है। दोनों की अपने अपने मकाम है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। अगर हम कहें रूह अफजल है, इसका मतलब आंखें फोड़ लें, हाथ काट के फेंक दें कि साहब रूह अफजल है, मोहब्बत अहले बैत है, मैं तो नमाज ना पढ़ेंगे, रोजा ना रखेंगे, या ऐसे ही है कि मोहब्बत है नमाज नहीं रोजा, यानी रूह है जिस्म नहीं। बगैर जिस्म के रूह का इजहार ही नहीं हो सकता, सबूत ही नहीं मिल सकता कि आपके रूह है अगर जिस्म ना हो। तो लिहाजा जिस्म अपनी जगह जरूरी, रूह अपनी जगह जरूरी, दोनों का कोई ये नहीं कि या ये या वो वाला मामला नहीं, दोनों, ये भी तब जाकर के। तो बहरहाल अल्लाह ने जब जिस्मानी जरूरतों का इतना ध्यान रखा तो क्या रूहानी जरूरतों की तरबियत और उन्हें परवान चढ़ाने के लिए एहतमाम ना होता? एहतमाम किया अल्लाह ने 11 कस्में खा करके। शायद पिछले साल मैंने इस पर अर्ज किया था, 11 कस्में खा करके, और वो भी उस सूरे में उसको बयान किया कि मुसलमान और कोई सूरा जानता हो या ना जानता हो, उस सूरे को जरूर जानता है। इसलिए जरूर जानता है कि वो सूरह ऐसी नमाज में पढ़ा जाता है जिसे कोई नहीं छोड़ता। सूरह शम्स इतनी नमाजें पढ़ते हैं ना, सूरह को पंजगाना पढ़े ना पढ़े, जुमा पढ़े ना पढ़े, ईद बहरहाल ईद की नमाज नहीं छूटती। वहां पर पढ़ा जाता है, सबको याद है, 11 कस्में खाई परवरदिगार ने, व शम्स व दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा व लैल इज़ा यख्शाहा व समाअ व मा बनाहा वल अर्ض व मा तहाहा व नफ्स व मा सवाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा कद अफलहा मन ज़क्काहा कद खाबा मन दस्साहा। तरबियत सलाहियतों को परवान चढ़ाने का बस एक ही जरिया है, वह है नफ्स का तस्किया। अगर तस्किया नफ्स हो गया तो सलाहियतें परवान चढ़ेंगी, वरना सलाहियतें परवान न चढ़ेंगी। 11 कसमें खाई हैं, वो जो मोहताज कसम नहीं है, वो तो मोहताज कसम नहीं ना है। मोहताज कसम न होने के बावजूद सिर्फ अहमियत को समझाने के लिए, नफ्स के तस्किये के लिए अल्लाह ने कुछ थ्योरी पेश की, ये जो है नजरियात पेश किए, और फिर उनकी अमली तरबियत का मौका फराहम किया। ये नमाज तस्किये नफ्स की अमली तरबियत का जरिया है, रोज़ा तस्किये नफ्स के लिए अमली तरबियत है, नफ्स की अमली तरबियत, उन सलाहियतों को परवान चढ़ाने की अमली तरबियत है, हज अमली तरबियत है। फिलहाल मौका नहीं कि मैं एक एक चीज़ों को बयान करूँ, ये तो खुद इंशाल्लाह कशरे का मौजू है, क्या पता अगले साल शायद इसी को पढ़ दिया, नहीं मालूम, वादा नहीं है कह दीजिए इसी मौजू का वादा दिया था। बहरहाल हज अल्लाह ने कुछ अफआल और आमाल मुअय्यन किए, कुछ जमाने मुअय्यन किए। माह रमजान एक कैंप है, एक जमाना है जिसमें इंसान के नफ्स की तरबियत होती है। ये मुहर्रम की मजलिसें, इसको मामूली मत समझें, ये सच ही नहीं है। आए रोए मामला खत्म, सवाब लिया, लपेटा, बंद किया, बिस्तर में चल दिए, नहीं, ये उसी नफ्स को तरबियत करने के लिए, तस्किये नफ्स के लिए, उन सलाहियतों को परवान चढ़ाने की आजमाइशगाह है, ये दर्शगाह है। और आप देखें कि इन चाहे माह रमजान हो चाहे मुहर्रम हो, बहुत सारी चीजें हमारी बदल जाती हैं, बहुत चीजें आशूर तक पहुंचते 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 काफी तब्दीली हमारे अंदर आ जाती है, सब में आ जाती है, एक दो की बात नहीं कर रहा। अब ये दर्जे अलग हैं, किसी में 10 दर्जा, किसी में 20, किसी में 100, मगर तब्दीली आ जाती है। आई हुई तब्दीली एक नेमत है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो तब्दीली बाकी रहेगी। क्या करें कि वो तब्दीली बाकी रह जाए, क्योंकि देखिए जब हम इस मरहले तक आ जाते हैं तब शैतान हरकत में आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, इमाम की हदीस अभी अर्ज करूंगा, जब तक हम दूर हैं इन चीजों से उस वक्त तक उसे कोई फिक्र नहीं होती। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम अपने महरम असरार सहाबी अब्दुल्ला इब्ने जुंदब, बड़े अहम सहाबी हैं, उनसे खिताब करके फरमाते हैं कि यबना जुंदब या अब्दुल्लाह قد نسب ابلیس حبائله في دار الغرور, शैतान ने अपने जाल इस दुनिया में फैलाए हैं, सबके लिए नहीं, क्योंकि जितने गुमराह हैं हर गुमराही के पीछे शैतान का हाथ नहीं, याद रखिएगा, हर गुमराही के कुछ कुछ खुद से गुमराह हैं, ऐसा नहीं है कि हर गुमराही के पीछे शैतान ही का हाथ है, सारी लानत शैतान पर, कुछ अपने ऊपर भी कर लिया करें, कुछ अपने ऊपर भी गल हैं। लकद नसबा इबलीस हबाएलहू फी दारिल गुरूर, शैतान ने इस दुनिया में अपने जाल फैलाए हैं, किसके लिए, सबके लिए नहीं, यहूदियों के लिए कोई जाल नहीं है, ईसाइयों के लिए कोई जाल नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई जाल नहीं है, वहाबियों के लिए कोई जाल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम कह रहे हैं, अभी अर्ज कर रहा हूं, एक जुमला भी मेरा नहीं है। जाल किसके लिए है, वमा यक्सुदु फीहा इल्ला औलियाना, शैतान ने जो जाल बिछाया है उसका निशाना, उसका टारगेट कोई नहीं है, हम मौलाई हैं, हमारे लिए ہم جو محرم کے مجلسوں سے تربیت پا چکے ہیں, ہم نے پہلی محرم سے عاشور تک حسین کے غم میں مصروف رہے, سینہ زنی کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے, مجلسیں کرتے رہے, ہم اپنے شب و روز اسی میں مصروف رہے. لوگ چھٹیاں لیتے ہیں تفریح کے لیے, ہم نے چھٹیاں لیا غم منانے کے لیے. ہم جو مصروف رہے, بہرحال ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا. گندا انسان نہانے جائے گا, صابن لگائے گا, صاف تو ہو ہی جائے گا. فرش ادا پہ ہمارے نفس کی طہارت ہو گئی, تو اب مغرور نہ ہو جائے کہ ہم تو ہو گئے, اب تو جنت ہماری پکی. زیادہ مشکل اب شروع ہوئی ہے, اب آپ آئے ہیں. جو لڑکا کالج گیا ہی نہیں تھا کبھی, اس کے لیے کیا مشکل تھی, ایڈمیشن مل گیا, اب مشکل شروع ہوئی. ایڈمیشن ملنے کے بعد مشکل شروع ہوتی ہے, ایڈمیشن ملنے سے پہلے کون سی مشکل ہے, آرام سے کھیل رہے ہیں. اس نے میں نے مثال دی تھی نا کہ وہ ٹیچر جب آئے لڑکے کے پاس, کہا کہو بیٹا الف, وہ الف کہنے کو تیار نہیں. گھنٹوں تک کہتا رہا کہو الف الف الف, نہ کہا تو ٹیچر نے جھلا کے کہا, ارے کمبخت ایک الف میں کیا پریشانی ہے, کیا پریشانی یہ ہے کہ آپ الف کے بعد چھوڑ تھوڑی دیں گے, مصیبت کا آغاز ہوگا, آپ کہیں گے کہو بے, کہو جیم, کہو دال, لہذا میں پہلے ہی الف نہیں کہتا. تو اب تازہ مصیبت شروع ہوئی ہے ہماری. بھائی جس کے گھر میں کچھ ہے نہیں, وہاں چور کیا کرنے آئے گا, وہاں کیا کرنے چور آئے گا. کسی جھوپڑے میں آپ نے سنا ہے کہ ڈاکہ پڑ گیا, ڈاکہ تو محلوں میں پڑتا ہے نا, جہاں ہے مال. اب ضرورت ہے ہوشیار ہونے کی, دس دن میں جو کمایا ہے اسے کھو نہ دیں. وما یقصد فیہا الا اولیاءنا, اس کا ٹارگٹ صرف ہمارے چاہنے والے ہیں, ہمارے مولائی. پھر فوراً مولا نے مولائی کی تعریف بیان کر دی کہ ہیں کون مولائی, محمد عسکری مولائی ہے جو فضائل پڑھتا ہے ممبر سے تو مولائی ہو گیا, یا مومنین جو نعرہ لگاتے ہیں وہ مولائی ہیں. نعرہ لگانے سے مولائی, یا فضائل پڑھ دینے والا مولائی, یا جو ہے فضائل سن کر کے خوش ہونے والے مولائی, ہیں کون مولائی. اب مولائی کی تعریف تو وہی بیان کریں گے نا. بے فرض کیجئے کہ امریکی حکومت نے اعلان کر دیا جو سٹیزن ہیں امریکہ کے ان کو ایک ایک لاکھ ڈالر ملے گا. میں نے کہا موقع اچھا آیا ہوا, میں بھی لگ گیا لائن میں, مجھے بھی مل جائے. تم کون؟ میں نے کہا امریکن سٹیزن. ان کا ثبوت؟ میں نے کہا ہندوستان کا پاسپورٹ. کہنے تم امریکن نہیں ہوتے. کیوں نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ, میں کہہ رہا ہوں میں امریکن ہوں. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ ان کا نہیں, جو شرائط ہم نے معین کیے ہیں اس پر اگر پورے اترو گے تب کہے جاؤ گے امریکن. البتہ مولائی اور امریکن قابل قیاس نہیں ہے. ہاں میں اسے مثال سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ کہاں یہ کہاں وہ, کہ نسبت خاک رب عالم پاک کا شرائط ہم معین کریں گے. اب شرائط مولا خود معین کر رہے کہ مولائی ہے کون, جس کے پیچھے شیطان پڑا ہے, جس کے پاس یہ ہے وہ ان کے پیچھے ہے, ورنہ شیطان اپنا ٹائم برباد نہیں کرتا, وہ اپنے وقت کی قیمت جانتا. ہم نہیں جانتے اپنے وقت کی قیمت, الگ سی بات ہے. وہ جانتا ہے کہاں جانا ہے کہاں. جو پہلے ہی سے بہکے ہوئے ان کو بہکا کے کیا کرے گا, جو خود چھوٹے موٹے شیطان ہیں وہ تو اس کے ہیلپر ہیں, مددگار ہیں, وہاں کیا کرنے جائے گا. ہے کون؟ لقد جلت الآخرة فی آئینہم حتی ما یریدون بہا بدلا. مولائی وہ ہیں, ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جن کے پیچھے شیطان پڑا ہے, وہ ہیں جن کی نگاہوں میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ وہ اس کا سودا کسی قیمت پہ کرنے کو تیار نہیں ہے. آخرت کوئی قیمت دے دیجئے, عہدا لے لو چھوڑ دو آخرت, نہیں چاہیے. مال دنیا لے لو, منصب, شہرت, عزت, دولت, کچھ نہیں چاہیے ہمیں. ما یریدون بہا بدلا, آخرت کا سودا وہ کسی چیز سے نہیں کرنا چاہتے. جہاں کہیں ہماری آخرت پہ آنچ آ رہی ہے, جی اگر آپ فلاں قسم کا چہرہ بنائیں گے, मैं कोई चेहरा बयान नहीं कर रहा हूं, हर आदमी अपने तौर पर खुद ही है। बहरहाल फना किस्म का चेहरा अगर बनाएंगे, ये तो पता है कि खुदा खुश होता है, मगर हमारा समाज खुश नहीं होता, हमारा समाज नहीं खुश होता। अगर सर पे स्कार्फ हो जाएगा, खुदा तो खुश है मगर समाज खुश नहीं होता, समाज मजाक उड़ाता है, तब क्या करेंगे? इमाम फरमाते हैं लकद जल्लत आखिरत फी आयुनहिम ला युरीदूना बिहा बदला, आखिरत उनकी निगाह में इतनी अजीम है कि उसके मुकाबले में कुछ कोई चीज भी उन्हें हिला नहीं सकती अपनी जगह पर। अगर हमें पता चल गया कि फला शक्ल अल्लाह को पसंद, जमाना कुछ भी कहे, फला लिबास अल्लाह को पसंद, जमाना कुछ भी कहे, फला काम अल्लाह को पसंद, जमाना कुछ भी कहे, ला युरीदूना बिहा बदला, अला कुलूबिन हुशयत नूरा, क्या कहना है उन दिलों का जो नूर से लबरेज है, जो नूर से लबरेज दिल हैं। हुशिया का लफ्ज वहां इस्तेमाल किया जाता है क्या किसी फैली हुई चीज को जो है वो समेट दिया जाए, जमा कर दिया जाए। आजकल टेबलेट बन जाता है ना, कॉम्पैक्ट जिसे कह रहे हैं, ये पूरा उसे निचोड़ के उनके यहां नूर भर दिया गया है उनके दिलों में। उसके बाद फरमाते हैं वह इन नामा कानते दुनिया फी आयुनहिम, ये तो आखिरत दुनिया के क्या उनके निगाह में हैसियत है। कल मैंने कल कह रहा हूं दो तीन दिन पहले मैंने मौलाए कायनात की निगाह में दुनिया के क्या अहमियत है बयान किया था कि मौलाना ने फरमाया था कि इन्ना दुनिया कुम इंदी अहवनो मिन वरकतिन फी फमे जरादतिन तकज़मुहा, ये तुम्हारी दुनिया मेरी निगाह में उस पत्ते से भी पस्तर है जो टिड्डी के मुंह में हो, टिड्डी उसे चबा रही हो, टिड्डी का चबाया हुआ पत्ता कोई कीमत नहीं रखता, मेरी निगाह में दुनिया उससे भी पस्तर है। अब ये मौलाइयों की निगाह में दुनिया की क्या हैसियत है, क्या ये हो सकता है वो मौला की निगाह थी, हमसे क्या मतलब? इमाम फरमाते वह इन्नमा कानते दुनिया फी आयुनहिम बेमंजिलति शजाइल अरकम वल अदूविल आजम, ये दुनिया को इस निगाह से देखते हैं, इनकी निगाह में दुनिया उस जहरीले सांप के मानंद है जो सहरा में रहता है। शजाए अरकम उस सांप को कह, सहरा में कुछ सांप होते हैं बड़े खूबसूरत जो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कि दूर से देखने वाला उन्हें कोई खूबसूरत लकड़ी समझता है, और जब करीब जाके छूता है पकड़ता है तो वो उसको डस लेते हैं। तो ऐसे के पास जब कोई जाता है तो बड़ी एहतियात से जाता है। वलादू विल आजम, इनकी निगाह में दुनिया उस सांप के मानंद है, इनकी निगाह में दुनिया उस दुश्मन के मानंद है जिसकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। एक दुश्मन वो होता है कि उसे अगर बातचीत कीजिए तो डीलिंग हो सकती है उसके साथ, मंतकी बात उसके समझ में आती है, मगर एक दुश्मन वो है जिसकी समझ में कोई बात ही नहीं आती, अपनी बात के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहता। इनकी निगाह में दुनिया की हैसियत क्या, ऐसे दुश्मन के करीब जाते हुए आदमी कितना होशियार रहता है कि भाई इससे तो बात भी नहीं हो सकती है, इसे तो हम समझा भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे के करीब जाता है तो कितना होशियार होके जाता है। वह इन्नमा कानते दुनिया फिया आयुनहिम बेमंजिलति शजाइल अरकम वल अदूविल आजम अनेसु बिल्लाह, ये अल्लाह से मानूस होते हैं। वस्तौहशु मिम्मस्तानसा बिहिल मुत्रफून, ये अल्लाह से मानूस होते हैं और उन चीजों से वहशत ज़दा रहते हैं जिससे ऐश परस मानूस होते हैं। वहशत और उन्स हर आदमी की जिंदगी में है, कुछ चीजों से आप मानूस रहते हैं, उनसे आपको कुछ चीजों से भागते हैं, जिन चीजों से भागते कभी कभी फंस जाते हैं उसमें, तो बादले नाखास्ता जरा सा होता है भाई। मिसाल के तौर के पर उनको एक बड़ी दिलचस्प नावल मिल गई, बहुत दिलचस्प नावल, दिलचस्प नावल को पढ़ना शुरू किया, रात गुजर गई, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि रात गुजर गई, अगरचे सुबह को जॉब पे भी जाना था। क्यों? उन्स। और कभी वहशत होती है, कुरान सामने रख दीजिए, दीन नबी आ रही हो तो आ जाएगी, है ना, वहशत है जल्दी खत्म हो। किसी जाकिर ने कहीं कहा था एक जुमला, कि इंडियन मौलवी के लिए आपके पास एक घंटा नहीं है, इंडियन मूवी के लिए तीन तीन घंटे हैं। मेरा जुमला नहीं है, किसी जाकिर का है। इंडियन मौलवी के लिए कनाडा वो आए थे, उन्होंने जुमला कहा था कि जहां हुआ फौरन टाइम, और अगर 10 मिनट ज्यादा पड़ गया तो बाद में आके कहते हैं भाई आप 10 मिनट ज्यादा पड़ गए। तो एक से ऊन साए और एक से इंसान वहशत ज्यादा फंस गया है तो क्या करें। इमाम फरमाते हैं कि जो हमारे चाहने वाले हैं, जो मौलाई हैं, उनकी शान यह है वो अल्लाह से मानूस हैं। वो जब मुसल्ले पर बैठते हैं तो जबर और इकरार से नहीं बैठते। बाद लोगों को जो है मुसल्लों पे लाया जाता है, बाजों को मुसल्ले से उठाया जाता है। इतने मानूस हैं हुजूर के बारे में, है ना, ताहा मानसलना अले कल कुरान तशका, मेरे हबीब इतनी इबादत भी ना कीजिए, खुमिल लैल इल्ला कलीला, थोड़ा सो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, हमसे बिस्तर छूटता नहीं है, वो बिस्तर के करीब जाते नहीं है। एक को उन्स है और एक मुतवहिश है। इमाम फरमाते हैं जिससे ऐश परस, जिसके रसिया होते हैं, जिससे उनको उन्स होता है, इससे ये वहशत ज़दा होते हैं। ऐश परस्तों को अच्छे खाने से उन्स है, घूमने फिरने से उन्स है, अच्छी गाड़ी से उन्स है, अच्छे मकान से उन्स है, इसी चीज को वो समझते हैं तरक्की का जरिया, कमाल का जरिया। उलाइका औलियाई हक्का, सच में ये है मौलाई, ये है मेरे चाहने वाले, ये सिफत इनके अंदर अगर पैदा हो जाए। क्या मतलब, दुनिया छोड़ छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें। दुनिया छोड़ने की बात नहीं हो रही है, दुनिया के सिलसिले में जो है मोहतात रहने की बात हो रही है, छोड़ने की बात नहीं है। अली से ज्यादा दुनिया गुरेज कौन होगा, और अली से ज्यादा दुनिया को किसने आबाद किया? दुनिया को आबाद करने से मना नहीं बनाया जा, दुनिया को मकसद ना बनाना। भाई मौलाए कायनात ने कितना दुनिया को आबाद किया, कितने बाग बनाए, कितने कुएं खोदे अली ने, ऐसा ऐसा बाग लगाए। एक अली के एक बाग में 48 टन खजूर होती थी, एक बाग में। ये अली का फाका जो है गुर्बत की बना पे नहीं है, बेकारी की बना पे नहीं है, काहिली की बना पे नहीं है। अली कुआं खेत को खोदते थे, अली बाग लगाते थे, बाग लग गया आवाम पर वक्फ। दुनिया को आबाद करने से नहीं मना गया है, दुनिया आबाद करो दूसरों के लिए, कमाने से नहीं मना किया गया है। ला खैरा फी मन ला युहिब्बु जमअल माल, इमाम फरमाते हैं जो माल को इकट्ठा ना करना चाहे उसमें खैर नहीं है। माल को इकट्ठा करो मगर माल को अपना खुदा ना बना लो, माल से चिमट के ना बैठ जाओ। अली बाग लगाते थे, कुआं लगाते थे, अरबों डॉलर का काम किया मौलाए कायनात ने, लेकिन घर में फाका हो रहा है, घर में फाका हो रहा है। मौलाए कायनात के बारे में एक दिन घर आए, कहीं बाहर गए थे, सफर पे थे, जंग में थे, नहीं मालूम। बहरहाल घर में आए, आने के बाद मासूमा से पूछते हैं क्या है घर में खाने के लिए। कह लिए आज 3 दिन हो गया है, बच्चों ने खाना नहीं खाया है। यानी पैगंबर के बाद ही मासूमा नहीं जाती थी कि बाबा ही से कुछ मांग लाती। अच्छा, एक बाग लगाया था मौलाए कायनात ने उसी वक्त, कह जाते हैं उसको बेचते हैं, 36,000 दीनार का बाग बिका, बहुत बड़ा जबरदस्त बाग लगाया था, बाग बिक गया 36,000 दीनार, बहुत होता है पैसा। आया कितने पैसे ले, क्या करेंगे हम। आया करके मस्जिद में बैठ गए, जमीन पर रख दिया, ऐलान कर दिया जिसे जरूरत है उठा ले, जिसे जरूरत है उठा ले। लोग आना शुरू हुए, उठाना शुरू किया, होते होते वाली ने पलट के देखा कोई नहीं आ रहा है। कहा लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, कहा वहां बचा क्या है, कोई आएगा, वहां कुछ नहीं बचा। तो दुनिया को आबाद किया ना, तभी तो पैसा आया। अच्छा, बात का जुमला जो इमाम की हदीस का है उससे पता चलता है ये खाना नशीनी की दावत नहीं दी जा रही है, ये जो है रूहबानियत की दावत नहीं है कि ठीक है साहब जब दुनिया आबाद ही नहीं करना है तो दे दो फिलिस्तीन इसराइल को, झगड़ा क्यों कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो। हमें क्या करना है इन चीजों से? नहीं, इमाम उसके बाद जो कहते हैं उलाए का उलियाई हक्का, ये हैं हमारे सच्चे चाहने वाले, हमारे मौलाई ये हैं। बेहिम तुक शफो कुल्लो फितनतिन व तुरफाओ कुल्लो बलिया, ये हमारे चाहने वाले वो हैं जो घर नहीं बैठते, बल्कि ये हर फितने को मिटाने में आगे आगे रहते हैं। दुनिया से अगर फितने मिटेंगे तो इनके जरिए, अगर मुसीबतें खत्म होंगी दुनिया से तो हमारे ऐसे चाहने वालों के जरिए से। ये वो हैं जो घर में बैठ के तमाशा नहीं देखेंगे, बल्कि जालिमों का मुकाबला करने के लिए मैदान में आकर के उनकी कलाई जो है मरोड़ देंगे। ये तो पहचान हो गई, और इनके पीछे शैतान लगा है। शैतान इन्हीं के पीछे लगा है कि जो कुछ इन्होंने 10 दिन में हासिल किया है लूट लो इनसे, छीन लो इनसे, इनका सरमाया छीन लो। बहुत बड़ी दौलत पाई है ना भाई हमने, बड़ा खजाना मिला है, अब डाकू हमारे पीछे पड़ा है, और हमारे ही पीछे, अब बचें कैसे? असलहा भी तो देंगे ना इमाम। इमाम उन लोगों में नहीं है जो फकत बीमारी बयान कर देते हैं, दवा नहीं देते। बीमारी बयान कर देना हुनर नहीं है, हुनर यह है कि बीमारी के साथ साथ दवा दें। दवा क्या है, तरीका क्या है कि अपने उस सरमाए की हिफाजत कर सके जो हमने मुहर्रम में हासिल किया है? कहते हैं जब न जुंदब, उसी रवायत में, बहुत तवील रवायत है, बस आखिरी जुमला पढ़ूंगा, बस खत्म मजलिस करूंगा। जब न जुंदब हक्कुन अला कुल मुस्लिमिन यारिफुना, हर मुसलमान, फिर फौरन लगा दी सिफत कि हम हरे, हमारा खिताब हर से नहीं जो दावा करते हैं। कुल मुस्लिमिन यारिफुना, वो मुसलमान जिसे हम अहले बैत की मारिफत है, यानी वही मौलाई। फिर पलट के बात आ गई ना, यानी हमारी तरफ, ये मुहर्रम वाले, ये आशूर वाले, ये अजा वाले, ये मातम करने वाले, खिताब उनसे। यबना जुंदब हक्कुन अला कुल मुस्लिमिन यारिफुना, हर मुसलमान जिसे हमारी मारिफत हासिल है उसके ऊपर फर्ज है। क्या फर्ज है? वो असलहा दे रहे हैं, अमलहू फी कुल यौमिन व लैला अला नफ्से फयकून मुहासबा नफ्से। फर्ज यह है कि हर शब रोज अपना अमल, अपनी रोजाना की कार्रवाई अपने नफ्स के सामने पेश करे। बिस्तर पे जब गए सोने के लिए, आज गए, आज 11 मुहर्रम है, सोने के लिए बिस्तर पे जब गए तो सोने से पहले, बाद लोग किताब पढ़ते बात होना करते नहीं, सोने से पहले दिन भर का अपना कच्चा चिट्ठा, अपनी फाइल खोल के बैठ जाओ पढ़ने के लिए। सुबह से क्या किया, अपना हिसाब लो। दूसरों का हिसाब लेने की बात नहीं हो रही है, हमारे यहां मुश्किल है कि हम हमेशा दूसरों का हिसाब लेना चाहते हैं, हमेशा फला ने यह किया तुमने क्या किया, फला ने यह गलती की तुमने क्या किया, फना को यह काम करना चाहिए था नहीं किया, तुम्हें जो करना चाहिए था तुमने क्या किया। इस्लाम का जो है मिजाज यही है कि दूसरों के गरीबान में झांकने की कोशिश मत करो, दूसरे की अमल की जहां तक हो सके तावील करो, तो जहां तक मुमकिन हो। एक साहब के हाथ में देखा शराब का जाम लिए हुए हैं, फौरन ना को कमबख्त शराबी है वो, नहीं हो सकता है शरबत पी रहा हो, गिलास वो वाला होगा, कहीं से आ गया होगा, गिफ्ट वगैरह नहीं तोड़ा था और रखा था उसमें पी लिया, नहीं भाई कलर होगा उसी कलर का शरबत होगा। हाँ, लेकिन अब सारे सबूत अगर फराहम हो जाएं फिर बात अलग है। किस्सा मशहूर है कि एक साहब जा रहे थे 3-पीस सूट पहने हुए, वहां एक भीगा कुत्ता आया, उनके कपड़े को टच करके चला गया। अब भीगा कुत्ता तो नजिस है ना, अब ये 3-पीस सूट से क्या करें, जो है वो ड्राई क्लीन से पाक भी नहीं होगा, ये पानी से धुले तो खराब भी हो जाएगा। कहने इंशाल्लाह बिल्ली है, बड़ी नस्ल की बिल्ली है, बिल्ली है तो पाक है, वो तो नजिस है नहीं, बदबख्ती से कुत्ता भौंकने लगा। कहने लगे तुम कितना ही भौंको तुम कुत्ते नहीं हो सकते, तुम बिल्ली ही हो। तो एक तो ये होता है नहीं ये नहीं, भोंकने लगा फिर तो, फिर तो मालूम है। तो हुक्म इस्लाम यही है कि दूसरों के बारे में हुस्न ज़न रखो। बाल की खाल निकालना है अपने यहां, दूसरों के अमल में नहीं। और हमारा मामला बिल्कुल उल्टा, हमें दूसरे की आंख का तिनका नजर आता है, अपना शहतीर नजर नहीं आता। इमाम क्या फरमाते हैं, फयकूना मुहासिबा नफ्से। भाई दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले अपनी गलती ढूंढो, क्योंकि दूसरों की गलती ढूंढने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तुम उसकी गलती बयान करो कि शायद वो तुम्हारी बात ना सुने, लेकिन अगर अपनी गलती ढूंढोगे तो इस्लाह कर लोगे। अपने अख्तियार में है ना, हम तो अपने, दूसरा तो हमारे अख्तियार में नहीं है। आपने हमको नसीहत किया, कोई जरूरी आपकी बात हम मान ही लेंगे, लेकिन अगर हम अपने को नसीहत करें, फयकूना मुहासिबा नफ्से, फिर वो अपने नफ्स का मुहासिब बन जाएगा। फइन रा हसनतन, जब शाम को बैठे रात में अगर अपने नामे अमाल में नेकियां नजर आई, आज सुबह उठे थे नमाज तो पढ़ाई था हमने, नमाज के साथ साथ एक पारा कुरान भी पढ़ लिया था, फला दुआ पढ़ ली थी, उसके बाद पड़ोस में एक मर्द मोमिन बीमार थे उनकी आयादत के लिए चले गए थे, फला बेचारे क्या खाना नहीं पका था उसकी मदद भी कर दिया था हमने, इस तरह की कोई भी नेकी मजलिस में चले गए थे, अगर अपने नामे अमाल में नेकियां नजर आ गई, इस्तवादा मिना, कल इस्तवादा करेंगे। अगर हम किसी को $10 दे सकते हैं तो 15 भी तो दे सकते हैं। कल अगर हम एक कोई अयादत के लिए गए थे, कल इंशाल्लाह 2 के यहां जाएंगे। अगर खुदा करे कोई इस काबिल ना हो कि हम जाएं उसकी अयादत के लिए, बीमारी कोई ना हो, डॉक्टर लोग नाराज ना हो जाए हमारी इस बात से, खुदा करे बीमारी कोई ना हो, हम क्यों जाए उसकी अयादत के लिए। लेकिन अगर है बीमार तो जितनी नेकियां कल किया था थोड़ा सा उसमें, वह इन रन, और अगर जब नामे अमाल को देखा तो उसके अंदर बुराइयां नजर आ गई, खुदा नखास्ता फला की गीबत कर दिया था, खुदा नखास्ता फला माल पड़ा था बिक नहीं रहा था झूठ बोल दिया हमने उसमें, फला को धोखा दे दिया, फला को टोपी पहना दिया, वो इन रहा सही आतन, तय तो कर लिया था शूर मशा में गरीबा में कि मौला आज के बाद से गुनाह नहीं, आपने अपना सारा घर कुर्बान कर दिया हमें रास्ता बताने के लिए, अब हम रास्ते से ना भटकेंगे, अब हम रास्ते से ना भटकेंगे। लेकिन भटक गए, तो लगा है ना पीछे, शैतान तो हमारे ही पीछे है, भटक गए, हो गया गुनाह, हो गया इस्तग़फार मिना, तो उसे इस्तग़फार करें। अब इस्तग़फार किसे कहते हैं क्या है, वक्त नहीं रह गया, बहरहाल इस्तग़फार करें, ले अल्लाह युख्ज़ा यौमल क़ियामा, ताकि क़ियामत के दिन फिर रुस्वा ना होने। एक वो इंसान जिसका अपने अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, मजलिसों से वास्ता नहीं था, अज़ाए हुसैन से वाकिफ नहीं था, वो अगर गुनाह करता और जहन्नम में जाता है उसकी जिल्लत नहीं होगी, लेकिन हम अहले बैत के चाहने वाले अगर अपनी बदामालियों की बिना पर जहन्नम की तरफ ले जाए जाएंगे, कहा देखा देखा ये कौन जा रहा है। ले अल्लाह युख्ज़ा यौमल क़ियामा, ताकि फिर हमारे चाहने वालों को क़ियामत के दिन जलील ना होना पड़े। अगर वहां के रुसवाई से बचना चाहते हैं तो एक ही चीज है, हम जलील होंगे और दुख किसे होगा, उन्हें होगा जिन्हें हम दुख नहीं पहुंचाना चाहते, जिनका दुख सुन करके हम तड़प जाते हैं, दुख उनको होगा। चुनांचे दुआ अबू हमजा समाली में है कि पालने वाले हम जब जहन्नम में जाएंगे तो अहले बैत को दुख होगा, दुश्मनों को खुशी होगी। हुसैन का चाहने वाला आया, हुसैन को दुख होगा, दुश्मनों को खुशी होगी, अहले बैत का मानने वाला आया। अजी तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं ना अहले बैत ने। कभी कभी होता है वालदैन अपने बच्चों को बाहर तालीम के लिए भेज देते हैं, हैसियत उनकी नहीं होती भेजने की, खुद फाका कर लेते हैं, बच्चों की फीस दे देते हैं, खुद बीमार हो जाते हैं, इलाज नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे का खर्च भेजते रहते हैं। आखिर में 4 साल 6 साल के बाद अगर बच्चा लायक बन करके आया तो अपना सारा दुख भूल जाते हैं, उन्हें याद भी नहीं रहता कि कभी हम भूखे थे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बच्चा जब पलट करके आया तो आवारा बन करके आया तो उनका सारा गम ताजा हो जाता है। हम भूखे रहे, इसकी फीस अदा किया, हमने अपना इलाज न किया, हम फटा पुराना पहने रहे, ये हमने हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, उनका गम उनका दुख बढ़ जाता है। अजीजों अहले बैत ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी, सकीना ने चेहरे पर तमाचे बर्दाश्त कर लिए, ज़ैनब ने बाजुओं में रसन बंधवा ली, सैयद सज्जाद ने हकड़ियां पहन ली काहे के लिए, ताकि हम शैतान के जाल में फंसने ना पाए। ए अजीजों अगर हम जाल से निकल गए, हम अगर सालिम बन गए, हम अगर राह खुदा पे चलते रहे, सकीना अपना दुख भूल जाएंगी। अरे तमाचे खाए तो क्या हुआ, हमारे शिया तो बच गए। लेकिन अगर हमारी इस्लाह न हुई, अगर हम न सुधरे, तो उनका सारा गम फिर से ताजा हो जाएगा, उनके दुखों में इजाफा होगा। हमने इतनी सख्तियां सही और हमारे चाहने वाले फिर वैसे ही के वैसे रह गए। बड़ी कुर्बानियां दी हैं अहले बैत ने, बड़ी कुर्बानियां दी अहले बैत ने। हुसैन की कुर्बानी का दिन कल खत्म हो गया, अब आज से ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, सकीना, सैयद सज्जाद की कुर्बानी का मौका शुरू हुआ है। क्या किरदार है जनाब ज़ैनब कुबरा का इस सिलसिले में, वाकयन एजाज आमेज किरदार है जनाब ज़ैनब का। आप मक्तले करबला पढ़ें, इमाम हुसैन की शहादत से पहले तक बार बार जनाब ज़ैनब बेहोश हो जाती थी, है ना, शब आशूर जनाब ज़ैनब बेहोश हुई, जुहर के वक्त बेहोश हुई, इमाम हुसैन के रुख्सत के वक्त बेहोश हुई। जनाब ज़ैनब उतूफत और मोहब्बत से लबरेज हैं, लेकिन शहादत हुसैन के बाद जब काफिला सालार बन गई ज़ैनब, अब जब ज़ैनब के कानों पर क़यादत का बोझ आ गया, एक तरफ से बीमार भतीजे की तीमारदारी करना है, एक तरफ से यतीम बच्चों को संभालना है। कल तक यतीम बच्चे, कल तक अब्बास से कहते थे, चचा अब्बास हम प्यासे हैं पानी पिला दो। अब बच्चे ज़ैनब के इर्द गिर्द इकट्ठा होते, फूफी अम्मा हम प्यासे हैं। वो सारी जिम्मेदारी जो हुसैन के कांधों पे थी, वो सारी जिम्मेदारी जो अब्बास के कांधों पे थी, अब ज़ैनब के कांधों पर है। आप देखिए ज़ैनब कितनी बदली हुई नजर आ रही है। शहादत हुसैन के बाद जैसे ही आवाज आई, अला कुतल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन बे करबला, आम हालात का तकाजा तो यही था कि जनाब ज़ैनब खेमे में बैठ करके बीवियों के गले लग करके आंसू बहाती रोती, यही तकाजा था ना। लेकिन ज़ैनब ने ऐसा किया नहीं, खैमे में रोने के बजाय खैमे से बाहर आई। आने के बाद अपने भैया के जनाजे को देखा, टुकड़े टुकड़े जनाजे को देखा। एक दफा भाई के जनाजे के पास बैठ करके कहती हैं, अल्लाहुम्मा तकब्बल हाज़ल कुर्बान, महबूद हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। उसके बाद ज़ैनब ने एक दफा मदीने का रुख किया, पहली मजलिस हुसैन की कायम की है ज़ैनब ने दुश्मनों के नरगे में, ये ज़ैनब की पहली मजलिस है, और यहीं से ज़ैनब ने हमें तहजीब अदा सिखाई, ज़ैनब ने यहां से हमें तरीका अदा सिखाया, मजलिस का सलीका सिखाया ज़ैनब ने। दोस्तों के सामने नहीं, दुश्मनों के सामने ज़ैनब मजलिस पढ़ रही हैं। मदीने का रुख किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। अजीजो ये रसूल कौन है जनाब ज़ैनब के, ये अल्लाह के रसूल कौन है, नाना है ना। इंसान की नफ्सियात क्या है, जब वो किसी मुसीबत में फंस जाता है, अगर उसका कोई अजीज रिश्तेदार किसी आला मनसब ओहदे पर है, उसे मनसब से पुकारता है या रिश्ते से पुकारता है, उसे मनसब से पुकारता है या रिश्ते से पुकारता है। नफ्सियात तो यही है ना, आवाज देगा बाबा चचा मामू नाना, यही तो कहेगा ना, रिश्ते से पुकारेगा। ज़ैनब पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, पुकार रही है, रिश्तों का हवाला नहीं दिया ज़ैनब ने, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम। आखिर वजह क्या है, क्यों ज़ैनब اس وقت جذبات کی رو میں بہ کر کے کچھ نہیں کہہ رہی ہیں. حکیمانہ جملہ ہے زینب کا, کہا سنو میرا بھیا شہید ہوا کائے کے لیے, یزید وہاں مذاق اڑا رہا تھا, نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قیامت ہے, یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. ڈھونگ رچایا کہ اللہ کے رسول ہیں. جناب زینب اس مصیبت کے موقع پر بھی نانا کے بجائے اللہ کا رسول کہہ کے بتا رہی ہیں, دیکھو اگر رسالت حکومت کے لیے ہوتی اب تو ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے, اب تو ہم رسالت کی بات نہ کرتے. اس موقع پر بھی ہم اگر رسالت کی بات کرتے ہیں تو رسالت ایک حقیقت ہے, ایک واقعیت ہے. ایک جواب جناب زینب یزید کو دے رہی ہیں, دوسرا جواب اس لشکر یزید کو دے رہی ہیں جو حسین کو العیاذ باللہ خارجی کہہ رہا تھا. یہ خارجی ہیں, دیکھو ہم تو ایسے مسلمان ہیں, ارے اس مصیبت کے موقع پر بھی ہم اللہ کو نہیں بھولے ہیں, اس کے رسول کو نہیں بھولے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ, ہم انہیں اللہ کے رسول مانتے, خارجی وہ ہیں جو ہمارے قاتل ہیں. پہلے اپنی حق کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہیں, اس کے بعد رسول خدا کے فضائل بیان کرتی ہیں. صل علیک ملائکت السما, اے اللہ کے رسول جب آپ اس دنیا سے گئے تھے تو آپ پر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی. صل علیک ملائکت السما, آپ کے اوپر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی. اب اس کے بعد مصائب کی طرف آتی ہیں, یہ کہنے کے بعد کہتی ہے وہاذا حسینک, اے اللہ کے رسول آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی, ہاذا حسینک, یہ آپ ہی کا حسین ہے. کس کا حسین؟ اگر وہاں کہتی نانا آپ پہ سلام تو یہ نانا کا نوازا حسین ہوتا, آپ کا حسین, نانا کا حسین نہیں. وہاں کیا کہتا؟ السلام علیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پہ سلام, ہاذا حسینک, رسالت کا حسین, یہ رسالت کا حسین ہے, نانا کا نواسا حسین نہیں ہے, رسالت کا حسین, ہاذا حسینک مرمل بالدماء مصلوب الحمامت والرداء مقطوع الاعضاء, اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین کس حالت میں پڑا ہے؟ آپ پر تو فرشتوں نے نماز پڑھی تھی نا, آپ کے حسین کو تو غسل و کفن بھی نہ ملا, یہ اپنے خون میں غلطا ہے, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, اس کے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے کفن دینے کے بجائے, مصلوب الحمامت والرداء. اس کے بعد جناب زینب کہتے ہیں نہیں نانا, آپ کے حسین کو غسل بھی ملا ہے, آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے, لیکن نانا آپ کے حسین کا غسل بھی انوکھا ہے, آپ کے حسین کا کفن بھی انوکھا ہے. غسلہ الدم الجار من وریده وکفنه الرمل الساقی علیه, اے نانا آپ کے حسین کو غسل دیا گیا ہے, کس چیز نے؟ رگے گردن سے جاری ہونے والے خون نے. اے نانا آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے, ارے صحرائے کربلا کی ریت نے اڑ اڑ کر کے حسین کو کفن دیا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارِ الٰہی واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم نے ایام اضا میں جو دولت سمیٹی ہے اس کی حفاظت کر سکیں. بارِ الٰہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمارے امام نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. بارِ الٰہی واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو لاولد ہیں انہیں صالح اولاد عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. ایک سورہ فاتحہ جناب سید علی محمد مرحوم کے.
یا حسین یا حسین یا حسین, یا حسین.